शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत ही सुंदर नशा चढ़ाया है। बाबा ने कहा कि ये जो ब्राह्मण परिवार है ये देवताओं से भी ऊंच है, तो बच्चों को भी वैसे तो परिवार की खुशी भी रहती है, तो बाबा ने कहा कि बच्चों को नशा रहना चाहिए कि ये ब्राह्मण परिवार कितना बड़ा ऊंच परिवार है। वैसे भी हम देखते हैं जो बाबा के बच्चे बनते हैं वे इस परिवार के बिना रह नहीं सकते हैं, सारा समय ब्राह्मण परिवार के साथ रहते हैं, गाते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, बैलते हैं, बीच बीच में चूचू भी करते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये जो परिवार है इतना ऊंच है, इतना श्रेष्ठ है, तो बच्चों को ये नशा भी रहना चाहिए। और दूसरी बात बाबा ने कही कि तुम बच्चे कहाँ पर इस समय खड़े हो, कौन बताएगा कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं बताओ। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे पुल पर खड़े हो। कौन सा पुल है? कलयुग से सतयुग जाने का जो रास्ता है बाबा ने बच्चों के लिए पुल बनवा दिया है, नहीं तो पार करना तो कितना कठिन है। अच्छा, जो खड़े हैं वो हाथ खड़ा करें, जो पुल पर खड़े हैं, खड़े हो या बोलो चल रहे हैं, बोलो हम तो पुल पर चल रहे हैं, खड़े रहेंगे तो देखते रहेंगे इधर भी पानी है इधर भी पानी है, अभी चलना है चलना है। तो बाबा तो बच्चों को हर बार आगे ही बढ़ाते रहते हैं, पुल पर खड़े भी हैं और साथ साथ चल भी रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कितने जन्मों के आशिक हो, बाबा को बताते रहे जब आएंगे हम आपको याद करेंगे और सब कुछ छोड़ केवल आपको याद करेंगे। बाबा कहते हैं मैं माशुक आया हूँ तो फिर मुझे क्यों नहीं याद करते हूँ। साथ साथ बाबा ने समय का भी ध्यान खिंचवाया है, हर रोज बाबा समय का भी ध्यान खिंचवाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो समय कितना बचा, कल भी बाबा ने कहा समय का कोई भरोसा है, कोई पूछ करके थोड़ी आएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा भी करते रहो और परिवार में भी रहो, तो बाबा ने समय का भी ध्यान खिंचवाया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 11 मई 2026 मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान मेहमान लायक बनाने। मीठे बच्चे बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान मेहमान लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। आज का प्रश्न है भक्ति मार्ग में परमात्मा माशुक को पूरा न जानते हुए भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। भक्ति मार्ग में परमात्मा माशुक को पूरा न जानते हुए भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? इसका उत्तर है बहुत प्यार से कहते और याद करते। क्या कहते? माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में तो क्या क्या गाया क्या क्या बोला, अभी याद करने की बात आती टाइम का हमको, अभी ऐसे कहते ना। भक्ति मार्ग में बहुत प्यार से कहते और याद करते हे माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो, तुम्हारा पहला फोर्स है, कौन सा फोर्स है? पहला फोर्स है प्यार से बाप को याद करो। बाबा रिमाइंड भी कराते हैं और ड्यूटी भी बताते हैं। और फोर्स क्या है? तुम्हारा पहला फोर्स है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया। बाबा दोनों बातें बता रहे, बाबा आपके सामने है लेकिन कैसे है, शरीर का लोन लिया उसमें बैठे हैं। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर के बच्चों को पढ़ाता हूँ। आता हूँ, क्या करता हूँ? आकर के बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बच्चों को ही तो समझाएंगे ना, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे, और किसको क्यों समझाएंगे? बाबा का तो है ना, बाबा कहते थे मैं अपने बच्चों से बात कर, दूसरों से बात करूंगा वो तो समझेंगे ही नहीं, तो औरों को क्यों समझाएंगे? बाबा समझते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे, और किसको समझाएंगे? कहते हैं बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। किस किसने बाबा को बुलाया भक्ति मार्ग में? इस जन्म में तो बुलाया ही नहीं हमने, है ना? कईयों ने तो भक्ति नहीं की होगी, कईयों ने बहुत की है, पूर्व जन्मों में तो बहुत कर लिए ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो, हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं, भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग और त्रेता युग किसको कहा जाता है और द्वापर कलयुग किसको कहा जाता। बाबा कहते ये भी स्मृति में रखना है कि सतयुग त्रेता में हम थे, क्या करते थे, उनमें कौन कौन राशि करते थे। तुम्हारी बुद्धि में अब पूरी नॉलेज है, जैसे बाप को रचने के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाबा ने ये सारा ज्ञान दे दिया, खुद रचयिता है, एक रचना का क्या पार्ट होता है बाबा ने बच्चों को दे दिया, इसलिए बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं, जितनी बाप की महिमा है उतनी किसकी महिमा है बताओ? बाबा कहते जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की भी है। बाबा ने बच्चों को इतना इंटेलिजेंट बना दिया है, बच्चों की भी उतनी महिमा है, लेकिन समझना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया, कितनी बड़ी बात, सबसे जास्ती महिमा बाबा के। लेकिन बाबा कभी कभी कहते हैं तो बच्चों की डबल पूजा होती है, मेरी सिंगल, इसलिए बाबा कहते हैं बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं, आत्मा ही एक दो से बात करते। शुरू शुरू में बाबा पक्का कराते थे, कहते थे जब भी बात करो कुछ करो तो ये अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात कर रहा हूँ, चाहे शरीर का नाम अलग है। अभी तो अभ्यास वैसे भी कईयों को होता है, कई कम करते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं कि फलाना पढ़ाता है, वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है, आत्मा का ही पार्ट है, आत्मा ही पार्ट बजाती है, देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। बाबा पहला लेसन फिर पक्का करा रहे, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं, तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो। साकार में भी बाबा बच्चों से पूछते थे, लेकिन जो बाहर वाले आते थे उनको पूछते थे, तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे। अब बाबा के बच्चे तो क्या कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे हैं। लेकिन मिस्टर बुक में भी लिखा हुआ है, बाहर वाले जो आते हैं वो कोई कहेगा हम इसका है इसका है, तो बाबा कहते हैं मिस्टर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है। तो झट देह के बाप को नाम बताएंगे, उनको पता नहीं है ना कि हम वैसे कहेंगे हम परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन उनको कहो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो झट देही के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा अब देही के बाप का नाम तो बताओ। बाबा देखो ज्ञान देने का शुरू शुरू में कितना अच्छा तरीका बताया, अब तो कैसे सीधा दो समझ आते हैं। अच्छा अब देही के बाप का नाम तो बताओ, तो कोई श्री कृष्ण का कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे या तो लिखेंगे या लिखेंगे नहीं, कोई तो श्री कृष्ण का हनुमान का नाम लिखेंगे या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और परलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। बाबा की तो उनको ही बताओ, भगवान को हमेशा याद करते हो क्या उसको नहीं जानते हो। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और परलौकिक बाप जिसको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दे दो। दुनिया में लोगों की देखो ना, एक कहेगा एक बच्चा दे दो, दूसरा कहेगा थोड़ा सा धन दे दो, तीसरा कहेगा छोटा सा मकान ही दे दो, तो कितना याद करते ना। तो बाबा किसी कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो। मांगते हो ना, बाबा कहते मांगते रहते, लेकिन है कौन वो तो जानना चाहिए ना। अब बाप को बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं, तुम देही अभिमान में बहुत रहते हो इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो हमेशा नशा चढ़ना चाहिए, भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना ये सब है भक्ति, सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ। बाबा के सामने बच्चे बैठते हैं बाहर के, और वैसे भी बैठे हैं तो भाई तो कहेंगे ना हमें ये फलाना है फलाना है, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का भी बाप हूँ। सब बाप एक भगवान को जरूर याद करते हैं, आत्मा ही तो याद करती है। भल कहते भी हैं कि ब्रिकुटि के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु ये शरीर बिगड़ ऐसे कोई कह ना सके, रहस्य का भी कुछ पता नहीं। अब बोलते हैं जब तक शरीर नहीं है तो आत्मा कैसे बोलेगी, तो बाबा कहते हैं परंतु ये बिगड़ समझ के ऐसे कह देते हैं, रहस्य का कुछ भी पता नहीं है। तुम आत्मा को ही, बाबा बता रहे देखो आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो और आत्मा के बाप को भी कैसे जान सके। अभी तक आत्मा को नहीं पहचाना है, आत्मा के बाप कौन है फिर कैसे पहचानेंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते पहले आत्मा को पहचानो, तुम आत्मा को नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार होता है भक्ति मार्ग वाला, भक्ति मार्ग में भी लोगों को बहुत दीदार होते थे, लेकिन किसको होता था, जो नोदा भक्ति करते थे। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ना सके। अभी भी ऐसे ही बाबा के कई बच्चों को बिंदु सो कहते बिंदु में कैसे बैठे, बैठ ही नहीं सकते। फिर बाबा उनको एक्सप्लेन करते हैं कि बिंदु के क्या गुण है, वो मनन करो। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदु का रूप दिखाए तो कोई समझ ना सके। ये है महीन बात, परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है, वो समझते ही नहीं है ना, कहेंगे बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, तो मूंझ पड़ते हैं। उनको को ना परमात्मा बिंदी है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते नहीं है। तो बाबा कहते मूंझ पड़ते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, अब फिर समझते नहीं थे, कहते थे बाबा बिंदी तो खिसक जाती है। बाबा कहते ये बिंदी खिसक क्यों जाती है, क्योंकि उसकी स्मृति में कम रहते हो। तो बाबा को भी बच्चे भी कहते बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, वो पुरानी बातें सुनाते हैं, उनको याद किया जाता है। अब बिंदी को याद कैसे करें, अब बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है, आत्मा को बुलाते हैं तो वह जरूर यहाँ आकर के बैठेंगे। बाबा कई बार बताते, बाबा कहते अगर परमात्मा बिंदी बहुत बड़ा है तो यहाँ आकर के ब्रिकुटी में इस आत्मा के साथ आके बैठे तो माथे में क्या होगा, बहुत बड़ा गोला निकल आएगा। किसी के माथे में छोटा सा गोला होगा, लोग कहेंगे अरे इसको ठीक कराओ ठीक कराओ, तो बाबा कहते बहुत बड़ा गोला हो जाएगा, क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है, आत्मा को बुलाते हैं वह जरूर यहाँ ही आकर के बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो सब साक्षात्कार आदि हैं वह सब है भक्ति। भक्ति मार्ग में जो भी साक्षात्कार होता है, बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है वह सब है भक्ति। भक्ति भी एक प्रकार की नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दी। कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, कोई कृष्ण को मानेगा, कोई हनुमान को मानेगा, कोई राम को मानेगा। तो बाबा कहते हर एक अपनी मान्यता अनुसार किसको भगवान कह देते हैं। भक्ति भी एक प्रकार की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे, एक तरफ वो कहते हैं एक तरफ कुछ कहते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहती हो तो फिर भक्ति किसकी करते हो, अगर परमात्मा ही सर्वव्यापी है तो फिर भक्ति किसकी। ये बाबा समझाने के लिए बता रहे हैं। सभी भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ऐसा मत समझो, अब क्या ध्यान खिंचवा रहे, बाप समझाते हैं बच्चे ऐसा मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना। कई तो ऐसे चलते हैं बस बहुत कुछ कर लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, आगे का भी कर लो वो कर लो। बाबा कहते ऐसे क्या मालूम, बाबा रोज मुरली के अंदर ध्यान खिंचवाते। कल भी बाबा ने क्या कहा, अचानक होता पता था कि ये होगा। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते बच्चे ऐसा मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये भी नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। किसको भी पता नहीं है कि विष्णु कौन है, विष्णु के दो रूप कौन है, विष्णु कौन है, किसको भी पता नहीं कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं और बनकर पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की अर्थात स्वर्ग की, फिर वह फिर पालना भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामे के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही क्या होना चाहिए, बाबा कहते वही तुम्हारा धंधा। बाबा खुद पतित से पावन बनाते, बच्चों को भी क्या करना, पावन बन के औरों को पावन बनाना। तो बाबा कहते हैं जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है, तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के तीन चार बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। लौकिक में होते ना, कई बच्चे तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कई तो फिर समझते ही नहीं है, कोई कम डल होते हैं। तो बाबा कहते हैं एक बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखलाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ, सबको लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते जब भी सुनाओ तो उनको बताओ, हर बात में ये पक्का करो शिव बाबा कहते, शिव बाबा कहते। कोई भी बहस करेगा तो उसको आप बता सकते, हम थोड़ी बता रहे, हम तो बाबा का मैसेज दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में श्री कृष्ण भगवानों वाच्य लिख दिया है, तुमको समझाना है भगवान तो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है। बस यही तो भूल है। कौन सी भूल? सर्वव्यापी कह देते हैं, बार बार आता है। बाबा कहते नहीं, वो पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे, फिर बाबा नशा चढ़ा रहे, अभी तुम बच्चे श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं और कोई प्रजा में आते। बाबा पक्का कराते, देखो राजधानी में आना है, प्रजा में तो आने वाले आते ही रहेंगे। फिर बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई राजा कोई प्रजा, कोई प्रजा के भी नौकर, नौकर के भी नौकर हो जाएंगे ना। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कोई राजधानी में आते हैं कोई प्रजा में। श्री कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण सबको बहुत ही प्यारा। आज बच्चे को भी श्री कृष्ण बना दो तो सब उसको प्यार करेंगे, क्योंकि वो जो स्वरूप है तो प्यार वल प्योर है ना। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण सभी को बहुत प्यारा है, बच्चे प्यारे लगते हैं ना। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, सारा प्यार बिखर जाता है। बच्चे होंगे तो बढ़ते जाएंगे तो माँ बाप का भी प्यार बढ़ता जाएगा ना, सारा प्यार बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बाबा कहते देखो बाबा भी आत्म अभिमानी देही अभिमानी है निराकार, लेकिन समझाने के लिए शरीर लेते हैं। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगड़ शरीर तो समझा नहीं सकेंगे, तुमको तो अपना शरीर है। बाबा हमेशा बच्चों को कहते देखो तुमको तो अपना शरीर है, मेरे को अपना शरीर नहीं है, फिर भी मैं शरीर लेकर तुमको पढ़ाता हूँ, तुमको तो अपने शरीर है। बाबा फिर लोन लेते हैं, बाकी इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। बाप खुद कहते हैं, मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना पड़ता। बाबा क्यों शरीर लेते हैं? आत्माएं केवल हम लोगों के लिए, हम जो तमो प्रधान बन गए उनको सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा को शरीर लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं, तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन आओ क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर के पावन बनाते हैं, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा। कितने होंगे? थोड़े से होंगे, आराम से रहेंगे, छोटा झाड़ होगा, बहुत प्यार से रहेंगे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा। तुम स्वर्ग में जाएंगे और बाकी कहाँ जाएंगे? बाबा उसने बोला, बाकियों को मैं परम धाम में सुला देता हूँ, सो जाओ। अब उनको ये भी पता नहीं कि हम सो रहे हैं या बैठे हैं, खड़े हैं बैठे हैं लटके हुए, कुछ पता नहीं। बाकी सब के सब क्या परम धाम में रह जाएंगे। बाकी जो भी खंड आदि हैं उनका नाम निशान नहीं होगा, भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा ही आकर के हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उनके यहाँ मंदिर हैं, चित्र भी हैं। तो बाबा कहते तो भारत की बात हो गई ना, उनके मंदिर चित्र केवल भारत में मिलेंगे। तो भारत में उनका राज्य था तब तो उनके मंदिर और चित्र हैं, तो भारत की बात हुई ना। ये कोई भारतवासी की बुद्धि में आता ही नहीं, ये कोई भी भारतवासियों की बुद्धि में आता ही नहीं कि भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी क्या हाल हो गया, क्योंकि सब कुछ भूलने के कारण फिर बाबा को कहना पड़ता है कि भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते अपने धर्म को भूल गए, फिर कर्मों में भी मिक्सचरिटी हो गई है, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर ये सांवरा था ना, अब वास्तव में सांवरा नहीं है। लास्ट जन्म तक भी आप देखो ये कितना शरीर बहुत सुंदर, लेकिन आत्मा के हिसाब से बाबा को कहना पड़ता है। बाबा कहते हैं बरोबर ये सांवरा था ना, कहते श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, वहाँ काला कैसे हो गया? वहाँ तो काले होते ही नहीं है, बहुत सुंदर देवी देवताएं होते हैं, वह काला कैसे हो गया? अभी ये बातें तुम समझते हो। श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे, अब कहाँ पढ़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, बाबा कहते श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं, माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं, अभी कोई पूछे ना श्री कृष्ण के माँ बाप कौन होंगे, ढूंढते रहो ढूंढते। कई ऐसे समझदार बच्चे होते, समझदार में ज्यादा ही बुद्धि चलाते कहेंगे कौन होगा, ये होगा वो होगा, ना बाबा बताएंगे, और मालूम भी पड़े तो पहले पता ही नहीं पड़ेगा। अच्छा बाबा के तो उनका नाम बिल्कुल ही नहीं होगा, इतने तक भी कोई नहीं उनकी महिमा करेगा श्री कृष्ण के माँ बाप है। जैसे कोई बच्चा अच्छा होता ना, बच्चे के कारण माँ बाप का नाम हो जाता है। आज बाबा ने क्या कहा सुनना ध्यान से, श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं, माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण का गाया हुआ है। माँ बाप का कोई भी नाम नहीं, उनकी जरा भी महिमा नहीं होगी, ज्ञान में भी अच्छे चल रहे हैं, ये है वो भी नहीं पता पड़ेगा। अगर पता पड़ जाए कि ज्ञान में बहुत अच्छे हैं, ये ऐसा है, तो बाबा कहते वो भी नहीं पता पड़ेगा और साथ साथ वो क्या है वो भी पता नहीं पड़ेगा। माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। अब समझिए ना, कहेंगे कौन होगा, जरूर ये जन्म देने, कोई कितना भी कहे, बाहर भी दुनिया में कि श्री कृष्ण को जन्म देने वाले उनका कोई भी नाम नहीं। आज कोई भी कहता है ये देगा, फलाना देगा, वो देगा, ये उनके जन्म देने वाले, उनकी ना महिमा है। अगर किसी की महिमा हो कह दे ये जन्म देने वाले, तो बाबा ने क्लियर कर दिया कोई भी नहीं महिमा। वो ऐसा गुप्त होगा पता ही नहीं पड़ेगा ये व्यक्ति भी है ऐसा। तो बाबा कहते हैं नहीं तो माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ भी नहीं है। माँ बाप की इतनी भी नहीं होगी, बस इतने होंगे और रॉयल होंगे, ये भी नहीं पता पड़ेगा ये इनके माँ बाप है। अगर उनका पता पड़ जाए तो श्री कृष्ण से ज्यादा उसको प्यार करे। तो बाबा कहते बिल्कुल उनकी महिमा नहीं होगी, महिमा कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। बाबा बता रहे हैं अंधेरी रात में ठोकरी खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, पहले भी बाबा ने याद कराया, क्या बोला कि समय कितना बचा है, समय कितना बचा हुआ कुछ भी नहीं है, पुरुषार्थ करो। अभी बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ तुम आधा कलप के आशिक हो। क्यों? क्योंकि आधा कलप से भगवान को याद करते आते हैं ना। तो बाबा कहते घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ तुम आधा कलप के आशिक हो, एक माशुक के भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशिक को पूरा जानते नहीं, याद बहुत प्यार से करते हैं। भक्ति मार्ग में कितना प्यार से, अभी भी देखो चाहे भक्ति में कितने मिक्स चैरिटी हो गई तो भी तो कितना प्यार से करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशुक तुम जब आएंगे तुम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। क्या क्या वायदे बाबा से किए, तो बाबा याद दिला रहे हैं, हे माशुक तुम जब आएंगे तुम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे गाते थे ना, गाते रहे ना, तो भक्ति मार्ग में तो बहुत कुछ गाया कि तुम आएंगे मैं वारी जाऊं बोलते रहे। तो बाबा कहते ऐसे गाते थे ना, परंतु बाप से उनको क्या वर्षा मिलता है ये किसको भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं तुम सिर्फ देही अभिमानी, इतना सहज कहते हैं बाबा और कुछ नहीं करो, तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना। तुम बच्चों का पहला फर्ज है क्या है, बाप को याद करना। बच्चा हमेशा बाप को और बच्ची माँ को याद करती है। हम जींस है ना, बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी। पहले जमाने में तो था ना, बच्ची को केवल दहेज देते थे, वारिस तो नहीं बनाते थे ना। अभी तो बल बदल चुका है, उस समय की बात बाबा कह रहे हैं, बच्ची माँ को याद करती। हम जींस है ना, बच्चा समझता हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी। वह तो समझती है कि हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। कौन सा पियर घर है? निराकारी दुनिया भी है और वो हमारा पियर है घर है। कितने पियर घर हो गए हैं? एक पियर घर है संगम युग, दूसरा परम धाम, तीसरा क्या कहेंगे, सचयुग पियर घर है या ससुर घर है, दोनों कह लो। पहले जाएंगे घर में जाएंगे, फिर वो भी हो गया। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है, बुलाते भी हैं हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख करो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। क्या क्या गाया, गाते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, कहेंगे हमको करो नहीं। बाबा कहते बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है, बाकी वे अपना कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। फिर बाबा बाहर वालों के लिए बता रहे, विद्वान आचार्य जो अपना कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। बाबा तो तुम्हारा भी कल्याण करते, तुम भी दूसरों का करते हो, बाकी वे अपना कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या कल्याण करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं, मैं गुप्त आता हूँ, खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना, दोस्त भी है, माता पिता भी है, शिक्षक का पार्ट भी बजाते हैं, यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते। अभी तो इतना नहीं होता, शुरू शुरू में जब ज्ञान था उस समय ज्ञान कम योग ज्यादा और साक्षात्कार बहुत थे, तो लोग क्या कहते थे, जादू या जादू है, लोग आने नहीं देते थे। ये भी एक बहुत बड़ा राज था, अगर वो जादू जादू ना कहते तो फिर क्या होता कि जिनका भाग्य ही नहीं है, जिनको लेना ही नहीं है, वो कैसे आते। जो जादू जादू कहते जिनको साक्षात्कार, वो बाबा के बच्चे बन गए, कई तो भाग गए, कई जादू के नाम से आए ही नहीं, उनका भाग्य में ही नहीं था इसलिए अच्छा हुआ। तो ये भी जो होता है कल्याणकारी है। जब बाबा कहते हैं जादू जादू कह देते हैं, साक्षात्कार तो नोदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भगत होते हैं, क्या कहते दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं। अब भगवान को ऐसे कहे तो भगवान को भी रहम आ जाता है, तब साक्षात्कार होता है। घर में बैठे बैठे बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। बाबा कहते मैं सब कुछ दूंगा लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं दूंगा, अगर दे दूं तो बच्चे क्या करेंगे, सब ज्ञान योग सर्विस पूरा हो जाएगा, साक्षात्कार में बैठे रहेंगे, तो बाबा ये चाबी नहीं देते। फिर बाबा ने देखा शुरू में ढेर साक्षात्कार होते थे, बच्चे उसमें ही लग गए, फिर बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट भी कम कर दिया। अभी तो बाबा क्या पक्का कराते हैं, ध्यान से ज्ञान ऊंचा है, ज्ञान से ऊंचा योग है। अभी किसको है इच्छा कि हम भी एक बार साक्षात्कार करें, हाथ खड़ा करो। नहीं, सब अच्छे पास है, पक्के हो गए, है ना सबको पक्का करना है। बाबा ज्ञान से योग से ही अनुभव कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। तो बाबा कहते हैं घर में बैठे बैठे बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं, क्योंकि क्या था शुरू में बहुतों को होता था, उनको बाबा कहते थे आओ यहाँ आओ, फिर बीच बीच में होते रहे, और अभी तो ज्ञान से ही सबको अनुभव होता है ना। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी थी, ये विनाश देखो अपना राज्य देखो। अब बाबा ने क्या साक्षात्कार कराया अर्जुन को कि ये हालत क्या होगी दुनिया की, फिर अपना राज्य कैसा होगा। ये विनाश देखो अपना राज्य देखो, अब मां एकम याद करो तो ये बनेंगे। साक्षात्कार कराने के बाद लक्ष्य भी दे दिया, अब मां एकम याद करो तो ये बनेंगे। अभी तुम समझते हो कि विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले भी खुद नहीं जानते। हमेशा दो तीन दिन पहले भी बाबा मुरली में बताते रहे, ये बिरला श्री कृष्ण का मंदिर बनाता है लेकिन उसको पता नहीं ये कौन है, उनको परिचय दो। तो बाबा आज कह रहे हैं ये मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना, चार भुजा का अर्थ ही है दो भुजा मेल की दो भुजा फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है, किसका भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था शुरू शुरू में, अभी भी है, बाबा को बहुत बाबा को देखते थे दूर से, दौड़े दौड़े आते थे, सब कुछ भूल जाते थे, बाबा का इतना आकर्षण था, अभी भी है, लेकिन माया ने उनको ऐसा बना दिया जो बाबा को छोड़ करके चले गए। तो पहले पहले बाबा का बहुत आकर्षण था, बहुत आते थे, शुरुआत में सारा आंगन भर जाता। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो इतने लोग आने लगे, उसमें ढेर आने लगे, फिर कैसे धीरे धीरे छटनी होती गई, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार पर झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे पैदा नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेंगे, तो सब चले गए। तो बाबा कहते हैं जज मजिस्ट्रेट सब आते थे, फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, ये तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात को भूल गए हैं, क्या है, भगवानों वाची काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो। शुरू शुरू में क्या था, थोड़ा झगड़े होते थे ना, फिर बाबा ने नियम बनाया था, नियम ही समझाने के लिए। सेंटर पर भी यही अभी भी कहते हैं कि दोनों साथ में आए तो दोनों समझेंगे, तो समझ से एक समझे फिर दूसरी ना समझे तो फिर पूरा टाइम कुछ कुछ चलता रहता ना। तो फिर कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं, अकेले को भी देते हैं तो उसको बोलते हैं अपने युगल को लेके आओ, अकेले को नहीं दो। अब दोनों आए तो देने ना, देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई तो ज्ञान लेते। कई परिवारों में ऐसा हुआ, दोनों के दोनों परिवार के परिवार एक ज्ञान में चला, बाकी सब किस प्रकार, कई तो सहयोगी रहे, अभी तक भी सहयोगी, कोई एक ज्ञान में चला, कोई थोड़े दूसरी तरफ चले गए। तो बाबा ने कहा देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं कोई नहीं लेते हैं, तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, कितना भी समझाओ तकदीर में नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा, तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस और एक बगला बन पड़ते हैं, यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। नशा, यहाँ ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, वहाँ स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा, ना जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब भी ये ज्ञान नहीं होगा, ना स्वर्ग में ज्ञान होगा, ना निराकारी दुनिया, ना मुक्ति धाम में होगा, ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं, अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं, जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबका, फिर सबको बाप साथ ले जाएंगे, सबको जाना है, पति दुनिया का विनाश होना ही है। बाबा कहते सबको जाना है, पति दुनिया का विनाश होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लावे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा, पहला है पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है, सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है, बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशुक को याद करना है। वरदान, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। हमारी दादियां सुनाती ना, कहां जब सेवा पर गए तो वहां बाहर सेवा पर रहते, हम खाए यज्ञ ना खाए, पहले बाबा के पास भेजे फिर हम कहेंगे। इसलिए बाबा कहते बुद्धि में क्या रहता था, बाबा और यज्ञ, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने बाबा और यज्ञ के स्नेह से, और सहयोगी भी बने, और इसी शक्ति से सेवा केंद्र भी खुलते गए ना। तो बाबा कहते हैं जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने, साकार स्नेह से ही मन मना भव बने, साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया, साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेरा डालो तो सफलता मिल ही जाएगी। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल या डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। अब व्यक्ति इशारे क्या टाइटल चल रहा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके। इतने पक्के होना जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता है। सदा अचल अडोल जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। कभी अचल कभी हलचल में ना तो सिंहासन मिलेगा ना फिर उम्मीद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, जो भाई बहने शांति वन से या ज्ञान सो से आए हाथ खड़ा करो। अच्छा, आप सभी को मालूम हो जो भी आते हैं यहाँ से वहां से, सभी का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, तो ये सबको ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी